ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீமத் பாகவதம் துஷ்யந்த் அத்தியாய 10 ஸ்லோக் சங்கியா 31 से लेकर आज हम प्रार्थना प्रारंभ करेंगे, जैसा कि कृष्ण कृपा से जितना हो सका। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था न निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाय नुपलक्षवर्त्मने नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वता विदूर काष्ठा यमुः कुयोगिना नीरस्त साम्या तिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरास्य ते नमा यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः किरातहोणा द्रपुलिन्दकुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाथ साधया इनि च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः प्रचोदिताये नपुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलस्यथ समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमां पुरो विभो निर्माय शेते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं साम्या यन्मुखान् गुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 10 जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं कि जीव की जितनी भी इंद्रियां हैं, और जो जीव के जितने भी भाव हैं मन के अंदर, उस सबका कारण, सबका स्रोत जो है वो भगवान ही है। क्योंकि भगवान के मन में जब कोई इच्छा उत्पन्न होती है, उसी के द्वारा ही वो इंद्रिय उत्पन्न होती है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उत्पन्न होता है, और उसका जो देवता है वो उत्पन्न हो रहा है। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए श्लोक नंबर 31 में श्रीदेव गोस्वामी बता रहे हैं, त्वच्चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जा स्थिदा तव भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्यो मांभुवायुभि त्वच्चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जा स्थिदा तव भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्यो मांभुवायुभि। शब्दार्थ, त्वक चर्म मांस रुधिर, त्वक माने चमड़ी, चमड़ी के ऊपर की जो पतली सी परत होती है उसको त्वक बोलते हैं, और चर्म यानी कि जो हमारी चमड़ी है वो, मांस मतलब मांस, रुधिर माना रक्त, मेद माना चर्बी, मज्जा माना मज्जा, स्थित माना हड्डी, अस्थि, और धातव मतलब तत्व, भूमि का मतलब होता है पृथ्वी, अप माना जल, तेज माना अग्नि, मया माना प्रधानतः सप्त सात, प्राणो व्योमांभु, प्राणों का मतलब होता है श्वास, व्योम का मतलब होता है आकाश, अंबु मतलब जल, और वायु भी मतलब हवा से। अनुवाद, त्वचा चर्म मांस रक्त मेदा मज्जा तथा अस्थि, शरीर के ये सात तत्व पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे कि हमारा शरीर जो है उसके अंदर जो जो वस्तुएं हैं वो किस तरह से उत्पन्न हुई है, किन किन हमारे जो शरीर के अंदर जो कुछ भी है, मतलब त्वक चर्म मांस रक्त मेदा मज्जा अस्थि, उन सब का कारण हम समझते ना हमारा शरीर है, उन सब को किससे बनाया भगवान ने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे बना। तो वास्तव में ये शरीर जो है वो भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम जो भटके हुए जीव हैं वो भगवान के पास जाकर आनंदित हो जाए, इस संसार से दुखों से छूटकर भगवान को प्राप्त करें। इसलिए भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है कि हम इस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति करें। परंतु दुख की बात यह है कि इस शरीर को प्राप्त करने के बाद हम भगवान को ही भूल जाते और केवल शरीर को ही सजाने संवारने और खिलाने पिलाने और इंद्र तृप्ति करने में मसरूफ रह जाते हैं। तो इस चीज को श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखतः पृथ्वी जल तथा अग्नि इन तीन तत्वों से हुई है, किंतु प्राण की रचना आकाश वायु तथा जल से हुई है। इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक सृष्टि दोनों में ही जल अभ्यनिष्ठ तत्व है, और भौतिक सृष्टि में अत्यधिक विशिष्ट तथा आवश्यक होने के कारण जल इन पंच तत्वों में प्रमुख है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि जो पंच तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसमें से जो तीन तत्व हैं कौन से, पृथ्वी जल तथा अग्नि, ये तीन तत्वों से जितनी भी भौतिक सृष्टि हुई है, इन तीन भौतिक सृष्टि मतलब संसार की हर एक चीज, वो पृथ्वी जल तथा अग्नि से ही उत्पन्न होती है। लेकिन जो प्राण की रचना है मतलब सांस लेना जीवन, उसकी रचना किससे हुई है, आकाश वायु तथा जल से। तो जल जो है वो भौतिक तत्वों में भी है, प्राण में भी है, और जल जो है इन पंच तत्वों में सबसे ज्यादा प्रमुख है। इस तरह भौतिक शरीर पांच तत्व से बना है, जबकि स्थूल शरीर केवल तीन तत्वों से, पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बनी है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत यानी त्वचा के कारण होता है, और अस्थि पत्थर के समान कठोर होती है। अस्थि मतलब जो हमारी हड्डी होती है वो एकदम कठोर होती है, सॉलिड होती है, और जो स्पर्श का अनुभव हम करते हैं, जैसे कोई हमें टच करता है तो फील होता है ना, तो वो किसका कारण होता है, जो हमारी चमड़ी की पहली पतली परत होती है त्वचा, इसको त्वक बोलते हैं, उससे होता है। श्वास यानी प्राण वायु आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न होते हैं, अतः शुद्ध वायु नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होता है। शुद्ध वायु यानी कि क्योंकि हमारे प्राण जो है, श्वास जो है, आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न होते हैं, इसलिए नियमित स्नान करना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, और रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल है। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा लाभप्रद है। अब क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है वो बना हुआ किससे है, पृथ्वी, जल और अग्नि से मिलकर बना है ना, तो इनको, इस स्थूल शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो जिससे ये बना हुआ है उसी से उत्पन्न जो वस्तुएं हैं, क्या है, अन्न है, शाक है, इन सब से उत्पन्न जो वस्तुएं हैं उसी को यदि हम यूज करते हैं, उस तो शुद्ध आहार से अपने शरीर को पौष्टिक करने के बाद तो उष्मा प्रदान होती है, उसके अंदर इतना पावर होता है कि वो जो कार्य करना चाहता है, मन मन बुद्धि इतनी पवित्र हो जाते हैं, अगर हम पृथ्वी से उपज हुई वस्तुओं को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं तो वो वस्तुएं जो है वो जो उससे हमें इतना पावर मिलता है कि हमारी बुद्धि प्योर हो जाती है, और भौतिक जो हृदय के अंदर ईर्ष्या है, क्लेश है, दूसरों के प्रति घृणा है, वो सब समाप्त हो जाती है। ये सब क्रोध, काम, ये सब क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम गलत आहार लेते हैं। हमारा शरीर जिससे बना है हमको उसी की उपज से यदि हम लोग अपने शरीर को पोषण भी देंगे तभी हमारा शरीर जो है वो प्योरिटी के साथ, पवित्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी श्लोक नंबर 32 में कहते हैं, गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुण मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुण मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। गुणात्मकानि इन्द्रियाणि, गुणात्मकानि मतलब गुणों से लिप्त, इन्द्रियाणि मतलब इन्द्रियां, भूतादि यानी अहंकार, प्रभावा अर्थात हे उससे प्रभावित गुण, प्रकृति के गुण, मन यानी मन, सर्व विकारात्मा, सर्व मतलब समस्त, विकारात्मा मतलब तनाव, सुख, दुख, और आत्मा यानी स्वरूप, बुद्धि यानी बुद्धि, विज्ञान यानी तर्क वितर्क, रूपिणी यानी कर उसके स्वरूप, रूप वाली। अनुवाद, इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं, यानी कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, उससे इंद्रियां जुड़ी होती हैं, और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। गुण कैसे उत्पन्न होते हैं? मिथ्या अहंकार। क्या अहंकार? जब जीव अपने आप को यह शरीर समझता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तभी उस पर गुण अटैक करते हैं। आगे मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों यानी सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। श्री प्रभुपाद की समझा रहे हैं कि भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीव आत्मा मिथ्या अहंकार करता है। अधिक स्पष्ट रूप में ये कहना चाहिए तो जीव आत्मा भौतिक शरीर के भीतर बंध जाने पर तुरंत देहात्मक संबंध बना लेता है। जैसे ही आता है वो क्या करता है? देहात्मक संबंध बना देता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। वास्तव में मैं कौन हूँ और भगवान मेरा है, वो भूल जाता है। और यह अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव होता है। फिर क्या होता है? यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यह अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है। जैसे जीव इस संसार में आ गया और अपनी रियलिटी को भूल गया और अपने आप को शरीर मानकर शरीर से रिलेटेड वस्तुओं को अपना माना, तो उसी टाइम पर क्या होता है, भौतिक गुण जो है वो उस पर अटैक करना शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव हो जाता है। है ना, जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंख है, कान है, नाक है, फिर वो रजो और तमो गुण की ओर बढ़ने लगती है। मन वह यंत्र है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है। जो भी भौतिक अनुभव, मतलब आज तक हमारे साथ जो हुआ, दुख सुख हानि लाभ, उनका मन पर असर पड़ता है, आभास होता है। किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। बुद्धि के अंदर थोड़ी भगवान ने ये शक्ति डाली है कि वो तर्क वितर्क करके हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उसे तरह तरह के कष्ट क्यों न मिलते हों, उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख हो जाता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताएं, भगवान ने बुद्धि दी है तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, वो अपनी बुद्धि को अच्छे से यूज कर सकता है, इस संसार की विषम परिस्थितियों का पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है। किस खोज में? क्योंकि साधारण व्यक्ति तो अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है वो तो ये सोचेगा ना कि आखिर मैं कौन हूँ, मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है, मैं संसार में क्यों हूँ, क्यों मुझे नियंत्रित होना पड़ता है, क्यों मुझे दुख झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बता रहे श्री प्रभुपाद जी इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, दुख जो मिल रहे हैं उनको मैं कैसे खत्म करूं, और इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख हो जाता है। फिर वही बात, संगति, अगर अच्छी संगति होगी, शुद्ध भक्तों के साथ संगति होगी, तभी ये पॉसिबल है कि जीव जो है वो अपने इन दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सके और ऐसे आदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह से, अहंकार से छूट कर सच्चिद आनंदमय जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल उपाय बताया कि यदि जीव अपनी बुद्धि को अच्छे से इस्तेमाल करे और एक शुद्ध वैष्णव किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आ जाता है तो वो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो उन्हें ऐसा उपदेश देंगे जिनसे जिनसे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाएगी। क्या उपदेश देंगे? अरे तुम तो मनुष्य हो, तुम कोई पशु थोड़े हो जो इस तरह से भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों के अंदर आसक्त हो, और साथ में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? तो हम को है ना मनुष्य जीवन केवल आहार निद्रा में नहीं बिताना चाहिए, इन वस्तुओं की आसक्ति में। तो जब जीव को ये सब बार बार पता चलेगा ना तो उसके मन की आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी, और इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छूटकर सच्चिदानंद में जीवन को प्राप्त होता है। हमारा जीवन वास्तविक सच्चिदानंद है, जहाँ पर केवल ही केवल आनंद है, सत्य है, चित्त है, लेकिन फिर भी परिणाम विपरीत है, क्योंकि हमारे जीवन में ना तो सत्य है, ना चित्त है, ना आनंद है। उसका कारण क्या है? भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ा। भगवान के साथ जो संबंध है वो यदि जुड़ जाता है तो फिर जीव इस भौतिक जगत के जितने भी जाल हैं उससे बच जाता है, आसक्ति समाप्त हो जाती है और कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने लगता है। यही जीव का वास्तविक स्वभाव है। श्लोक नंबर 33 में बताते हैं, एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिः बहिरावृतम्। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम्। शब्दार्थ, एतद् भगवतो रूपम्, एतद् मना ये सब, भगवतो यानी भगवान के रूपम, स्थूलम ते व्याहृतम मया, स्थूलम मतलब जो स्थूल है, ते यानी तुमको व्याहृतम बताया गया, मया मैंने आपको भगवान के स्थूल रूप के विषय में बताया, मही आदि भी, मही मना लोक, आदि मतलब इत्यादि, च निरंतर, अवरय, अवरय मतलब आवरण से छुपा हुआ, अष्ट भी आठ, बही यानी बाह्य, आवृतम मतलब ढका हुआ, आठ आवरणों से ढका हुआ है। अनुवाद, इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोकों की ही तरह स्थूल रूपों से गिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले कर चुका हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7.4 में कहा गया है कि भगवान की वियुक्त भौतिक शक्ति आठ प्रकार के भौतिक आवरण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार से घिरी हुई है। ये सारे आवरण श्री भगवान की बाह्य शक्ति के रूप में उद्भूत है, मतलब ये जो आवरण है यानी जो पर्दे हैं वो क्या, असल में श्री भगवान की बाह्य शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। ये सूर्य के चारों ओर बादलों के आवरण के तुल्य है। यद्यपि बादल सूर्य के ही द्वारा सृजित हैं, किंतु वास्तव में आंखों के सामने इसके आने के से सूर्य नहीं दिखता, है ना? ये बादल कैसे बने? बादल जब सूर्य तपिश होती है बहुत ज्यादा, तो समुद्र के पानी को सूर्य जो है वो अपनी तपिश से बाफ में परिवर्तित करके उसको उसके द्वारा बादल बनते हैं। लेकिन जब बादल बन जाते हैं, बादल सूर्य के ही द्वारा सृजित है, किंतु वास्तव में आंखों के सामने बादल के आने से सूर्य नहीं दिखता। सूर्य बादलों से नहीं ढक जाता है, क्योंकि बादल आकाश में कुछ 100 मील तक ही फैले रह सकते हैं, किंतु सूर्य लाखों मील से भी अधिक विशाल है। अतः 100 मील का आवरण लाखों मील को नहीं ढक सकता। अतः भगवान की ही कोई एक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, किंतु ये शक्तियाँ भगवान द्वारा उन भद्र जीवों की आंखें बंद करने के लिए हैं, जो प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर एग्जांपल दी कि भगवान की जो बहिरंग शक्ति है वो भगवान के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकती, लेकिन हम जो भद्र जीव हैं, वो यदि भगवान को समझने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, इच्छा नहीं करते, तो बहिरंग शक्ति जो है वो हमारी आंखों को ढक देती है, जिसके कारण हम भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, किंतु ये शक्तियाँ भगवान के द्वारा उन बद्ध जीवों की आंखें बंद करने के लिए हैं, जो प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। वास्तव में बद्ध जीव पदार्थ के मोहजन्य बादलों से आच्छादित रहता है, और यह भगवान के ऊपर है कि वे उन्हें दिखें या ना दिखें। वास्तव में भक्तों, ये भगवान की कृपा से संभव है कि हम भगवान को दिखें, भगवान को जाने, यानी ये हम चाहे कितना ही सुंदर साधन क्यों न कर रहे हों, लेकिन क्या हम अपने उस साधन से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या हमारे हृदय में वो कृष्ण को प्रसन्न करने की तीव्र भावना है? यदि वो भावना नहीं है, तो फिर चाहे हम कितना ही सुंदर दिख रहे हो, लेकिन हृदय के अंदर यदि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, प्योरिटी नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भला भगवान हमें क्यों दिखेंगे? और अगर इतिहास में देखा जाए तो भगवान किसको मिले हैं? क्या शबरी की क्या साधना थी? क्या उसने क्या जो वो शालिग्राम शिला से मांस को तोलते थे, मांस मतलब भगवान की कृपा किस पर होगी उसका हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी तो वो सदना कसाई से रीत जाते हैं, तब कभी तो जूता गांठने वाले चमार के साथ रीत जाते हैं, कभी तो कोई सदियों तक जो तपस्या करता है जंगलों में जाकर, उनकी भी तपस्या से प्रसन्न नहीं होते। हृदय के अंदर कितनी प्योरिटी है, भगवान को केवल वही दिखती है। इसलिए यहाँ साफ साफ बताया, क्योंकि बद्धजीवों के हृदय बद्धजीवों के दिव्य दृष्टि नहीं होती है और भगवान को देख नहीं सकते हैं, अतः वे भगवान के अस्तित्व तथा उनके दिव्य रूप को नकारते हैं। अब भगवान को तो जीव नहीं देख सकता, अतः वे भगवान के अस्तित्व तथा उनके दिव्य रूप को नकारते हैं, क्योंकि देख नहीं पाते। वो क्या सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, तभी तो नहीं दिख रहा है। अल्पज्ञानी पुरुष विराट भौतिक रूप का आवरण स्वीकार कर लेते हैं। संसार का जो कण कण है, वो सोचते हैं बस भगवान की सत्ता यहीं तक है और उनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। और ये कैसे होता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। श्री प्रभुपाद की जय। आगे श्लोक नंबर 34 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अतः परम सूक्ष्मतम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्यं निधनम नित्यं वाङ् मनसः परम। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यं वाङ् मनसः परम। अतः परम सूक्ष्म, अतः मतलब अतः, परम यानी दिव्य, सूक्ष्मतमम यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अव्यक्तम निर्विशेषणम, अव्यक्त मतलब अप्रकट, निर्विशेषण मतलब बिना भौतिक रूप के, अनादि मध्य निधनम, अनादि मतलब आदि रहित, मध्य मतलब मध्य अवस्था के बिना, निधनम मतलब अंत रहित, नित्यम वांग मनसः परम, नित्यम मतलब शाश्वत वांग मन शब्द, मनसा मन शब्द, मन का परम यानी दिव्य। अनुवाद, अतः इस यानी स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, न तो उसका आदि है, न मध्य है, न अंत है। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं से परे और भौतिक बोध से भिन्न है। तो यहाँ पर भगवान के उस दिव्य संसार के विषय में बताया जा रहा है जो इस भौतिक जगत से बहुत परे दिव्य है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। मतलब उसको समझना बहुत कठिन है, ना तो इसको इसका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। तो उसकी यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं से परे, हमारी बुद्धि जो है वो केवल भौतिक वस्तुओं को समझ सकती है। वो वस्तुएं कौन सी, क्योंकि संसार में हमको पता है भाई ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद उसका नाश हो गया। लेकिन जो भगवान की दिव्य प्रकृति है, जो आदि मध्य और अंत से रहित है, उसको तो केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। वो हमारी इस भौतिक बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आ सकता, इसलिए वो हमारी चिंतन की सीमाओं से परे है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप बीच बीच में प्रकट होता रहता है, अतः यह रूप शाश्वत रूप नहीं है, जिसका ना तो आदि है, ना मध्य है, ना कोई अंत है। जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत होता है वह भौतिक कहलाती है। इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ, अतः जगत के प्रारंभ के पूर्व भगवान निश्चय ही सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्य रूप में रहते हैं। जब जगत का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रारंभ नहीं हुआ था, तभी भी भगवान तो थे और अपने सूक्ष्म दिव्य रूपों में थे। फिर भगवान ने अपनी शक्तियों को विस्तारित किया, बहिरंगा शक्ति से जगत का निर्माण किया, और अतः जगत के प्रारंभ के पूर्व भगवान निश्चय ही सूक्ष्म से सूक्ष्म सा दिव्य रूप में थे। भौतिक जगत का आकाश सूक्ष्मतम माना जाता है, जिससे सूक्ष्म मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार होते हैं, किंतु आठों बाह्य रूपों को परम सत्य के बाह्य आवरणों के रूप में बतलाया जा सकता है। आठ आवरण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है, परम सत्य के बाह्य आवरण है और उसके रूप में बताया जाता है। अतः परम सत्य भौतिक अवधारणाओं की व्याख्या एवं कल्पना से परे हैं। वे निश्चित ही भौतिक चिंतन से परे हैं। यह निर्विशेषणम कहलाता है, किंतु निर्विशेषणम को दिव्य गुणों से विहीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि भगवान का जो